إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم बेशक वो तुम भी और वो भी जिनकी तुम इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। फिर अंतुम लहा वारिदून, और तुम इस पर वारिद होने वाले हो। उसी के लिए लहा शुरू के अंदर आ गया, तो इससे पता चलता है कि हसर आ गया इसके अंदर, मीनिंग इसी में बस तुमने वारिद होना, यानी कयामत के दिन काफिर भी और जिनकी वो पूजा करते थे उनको भी जहन्नुम में डाल दिया जाए। आप देखें इस चीज को लेकर काफिरों ने कहा कि अच्छा उनको भी जहन्नम में डाला जाएगा, तो फिर ईसा अलैहि सलाम का क्या होगा? फिर उनको भी तो लोग खुदा का बेटा कहते हैं। या ऐसे वो लोग जो अल्लाह के प्यारे बंदे और लोग वो खुद शिर्क से बेजार थे, वो दुनिया से चले गए, लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया। हजरत मरियम हो गई, हजरत उजैर हो गए, या नूह अलैहि सलाम की कौम में जो नेक लोग थे लोगों ने बाद में उन्हीं के बुत बना लिए और उनको पूजने, वो थोड़ी कह के गए थे हमारे साथ ये करो। अब बुजुर्गाने दीन है, आज लोग उनकी कब्रों के ऊपर सजदे कर रहे हैं, लोग पड़े में उनकी कब्रों के आगे उनकी कब्रों की तरफ मुंह करके हाथ उठा के दुआएं मांग रहे। वो कह के गए थे क्या ऐसे ऐसे किया करना, जब मैं मर जाऊं तो फिर ये करना? ये तो अल्लाह के प्यारे नेक बंदे थे, उन्होंने तो नहीं इनको ये तालीम दी थी। लेकिन लोगों ने पीछे से अब इस तरह की हरकतें शुरू कर दी, तो उसमें उनका तो कसूर नहीं, वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें वो शामिल है जैसे कि लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, सूरज को टिकिया की तरह, सूरज और चांद को हदीस में आता है टिकिया की तरह जहन्नुम में डाल दीजिए। तो मैं सोच रही थी सूरज इतनी बड़ी चीज है, जहन्नुम कितनी बड़ी होगी? बाज लोग कहते हैं हो सकता है सूरज ही जहन्नुम बना दी जाए। नहीं, हदीस से पता चलता है सूरज को भी जहन्नुम में डाला जाएगा क्योंकि लोग इसकी पूजा करते हैं। क्यों ऐसा? ये नहीं ये सूरज चांद को सजा दी जा रही, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए जो उसको पूजते थे कि उनकी हसरतें हों कि हाय ये चीजें थी जिनको पूजते थे, आज कितने बेबसी में ये गिरे पड़े, हम कितने पागल थे, और उनकी हसरत और अफसोस में और इजाफा हो जाए और उनकी तकलीफ में कि हम किनको पूज रहे थे। इसी तरह वो लोग के जो अपनी पूजा इस दुनिया में करवाते हैं और इससे खुश होते हैं, बल्कि वो कहते हैं वो अल्लाह माफ करे अस्तगफिरुल्लाह, अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखा होता ये वीडियोस तो मैं कभी यकीन ना करती कि ऐसे भी मुसलमानों में कोई ऐसे लोग हैं खड़े में और उनके आगे लोग सजदे कर रहे हैं। हम खड़े में आराम से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अंदर से लरस जाते हैं कि जैसे हम अल्लाह ताला के आगे सजदा करते हैं वो इस तरह उनके पैरों पे अपना सर रख रहे हैं, अपना माथा रख रहे हैं, और वो उनको ऐसे ऐसे अस्तगफिरुल्लाह जैसे कोई जानवर को करता है इस तरह उनको पैट करते हैं और उनको जाने देते हैं कि अच्छा आप जाओ। जो इस तरह से खुश हो और अपनी पूजा करवाए, इसी तरह मैंने हिंदुओं के अंदर भी देखा है। अब वो बुतों की तो जो पूजा करते थे, अब उनके कुछ बाबे भी हैं उनकी भी पूजा शुरू कर दी, उनकी भी तस्वीरें लगाई हुई हैं। और एक तस्वीर मैंने देखी कि उसका पैर है और उसकी इतनी बड़ी तस्वीर बना के उन्होंने अपने घर में लगाई हुई थी कि ये भी हमारे कोई है, यानी वो आजकल की आजकल जिंदा है वो लोग, उनको भी पूज रहे हैं। तो जो हस्तियां भी अपनी इबादत करवाती हैं और इस पे राजी हैं, वो इट्स ओके विद देम, लोग उनको सजदे कर रहे हैं वो इससे खुश हैं, या वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे पास आए हैं दुआएं करने के लिए, हमसे आके कह रहे हैं हम इनके लिए मांगेंगे जो हम करेंगे, वी आर द बॉस, अस्तगफिरुल्लाह। तो वो भी जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। इस तरह सूरज है, चांद है, या जो दरख्त हैं, या जो पत्थर हैं जिनकी भी लोग पूजा करते हैं, वो भी जहन्नुम में डाले जाएंगे। तो जहां तक ऐसे लोगों का सवाल है ना, आप अंदाजा इससे करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक फरमाया कि जो ये चाहता है कि वो आए और लोग उसकी ताजीम में खड़े हो जाएं, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। समझ आई आपको ये बात? वो आए और लोग उसकी ताजीम में खड़े जाएं जो ये चाहता है, इसलिए क्योंकि किसी का ये हक नहीं है कि वो अपनी बड़ाई दिखाए, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए। हाँ, लोग खुद ही उठ के आपके इस्तकबाल के लिए आगे आ जाते हैं, आपको हक करते हैं, आप आते हैं तो लोग आपको वेलकम करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसकी ख्वाहिश रखना कि जब मैं एंटर हूं सब खड़े हो जाएं। हम बचपन में देखते थे स्कूलों के अंदर टीचर आते थे तो सब स्टूडेंट्स को खड़े होना पड़ता था। अगर तो वो स्टूडेंट अपनी ख्वाहिश से खड़े हुए हैं अदब के अंदर टीचर को वेलकम करने में, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उस्ताद की तरफ से ये डिमांड है कि सब खड़े हों क्योंकि मैं आ गया हूं, और जो लड़का लड़की नहीं खड़े होंगे, और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम नहीं खड़े हो, ये खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि जो ऐसी ख्वाहिशात रखते हैं ना, शिर्क की इब्तदा देखिए यहीं से होती है ना, ये शिर्क के दरवाजे खोलते हैं। तो ऐसे अपने आप को समझना कि मेरे लिए लोग खड़े हो, इतनी बात को भी ये फरमाया गया अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले, तो और क्या इससे बढ़ के क्या बात हो सकती। सिर्फ खड़े होने पे ये, अभी ये कोई सज्दे नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे, खुदा नहीं बनाया हुआ। तो जिन्होंने अपने आप को आज ये बनाया हुआ कि हम तो खुदा ही हैं, हमारे आगे सज्दे करो क्योंकि हम भी तो इस लायक है, कोई बात नहीं है अगर कोई सज्दे कर भी रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े हमारे सज्दे करें, ठीक है। ये पता नहीं कैसे, मुझे तो उनकी भी अकल मारी गई जो के सज्दे करने वाले, और जो करवा रहे हैं उनको क्या दीन का इल्म है, ये भी हैरानगी होती है। इनको वो पहुंचे हुए समझते हैं, पता नहीं किधर ही वो पहुंच गए, इनको बिल्कुल ही सेंस नहीं। इसको बर्दाश्त कैसे करते हैं कि कोई उनके आगे सर रखे। तो वो उस दिन हसबु जहन्नम होंगे, और अंतुम लहा वारिदून, और तुम लोग जो इस तरह करने वाले हैं जहन्नम पर वारिद होने वाले हैं, यानी यहाँ पे बरूद से मतलब है कि उसमें दाखिल होने वाले हैं। क्योंकि आगे इसकी अगली आयत का एंड इसी को बता रहा है, लव कहना है उलाई आलिहतन ना वारा दूहा, कुछ कॉमन सेंस ही यूज करते। अगर ये जिनको तुम पूछते हो, अगर ये इला होते तो क्या जहन्नुम में वारिद होते, जहन्नुम में दाखिल होते, वकुल्लुन फीहा खालिदून, और सब के साथ इसमें हमेशा रहने वाले, जिस जिनकी पूजा कर रहे हैं वो भी, और जो जिनकी पूजा जो पूजा करने वाला है वो भी। क्योंकि देखिए अगर ये खुदा होते तो जहन्नुम में क्यों पड़े होते, यही तो इनको दिखाना था अल्लाह ताला ने, इसलिए उनको डाला जाएगा जहन्नुम। जो किसी की पूजा करता है, जो खुदा होता है, उसका तो ये काम है कि इसको जहन्नुम से बचा ले, और जो खुद ही जहन्नुम में जाकर गिर गया वो क्या खुदा है फिर। अल्लाह ताला तो अपने मानने वालों को जहन्नुम से बचा लेगा, ये क्यों नहीं बचाने आए। लहम फीहा जफीर वहम फीहा ला यस्माउन, अस्तग़फिरुल्लाह, उनके लिए इसमें कराहने की आवाज होगी, ऐसी आवाज जैसे गधे की तरह आवाज होती है ना, ये इनकी कैफियत होगी। जो जहन्नुम तक पहुंच जाएंगे वहां से कभी नहीं अब इनको निकलना। तो इनको ऐसे जगहों पे, ऐसे चैम्बर समझ लें, ऐसे चैम्बर्स में बंद कर दिया जाएगा जिसमें आग ही आग होगी, वो चैम्बर्स भी आग के होंगे बने, यहाँ आग का ही अजाब है। और साथ ये है कि वहम फीहा ला यस्मऊन, और वो कुछ उनको सुनाई नहीं देगा, यानी कोई संगी साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई गमख्वार नहीं, किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रहे। अब सोचेंगे एक तो गम और ऊपर से एक तन्हाई कि जहां कोई भी नहीं है। आप इससे अंदाजा करें कि हमें एक चीज थोड़ा सा ये एक झटका लगा है कोविड का, और इसके अंदर हम एक तरह से सोशल बायकॉट सबका हो गया, सब अपने अपने घरों के अंदर ही बैठ गए, तो लोगों के ऊपर कितने असरात हुए, मेंटली लोग कितने डिस्टर्ब हो गए। कि यानी जब ये वैक्सीन आई है तो उसके बाद मैंने एक जगह पे पढ़ा, लोगों ने अपने तासुरात लिखे हुए थे जिसमें पूछा गया था कि इससे आप इसके बाद आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है ये वैक्सीन लगाने के बाद। तो उन्होंने कहा कि हम अपने प्यारों से मिल सकेंगे। यकीन जाने अगर 100 कार्ड्स लगे हुए थे ना, तो उनमें 99% ने ये लिखा हुआ था कि हम अपने प्यारों से मिल सकें, अपने दोस्त अहबाब से मिल सकें। किसी ने कहा था हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिल सकें, किसी ने कहा मैं फलानी जगह अपने पेरेंट्स को देखने जा सकूं। तो इंसान की ये एक जरूरत है कि उसके रिश्ते या उसके प्यारे उसके करीब हो, और दुख में तो और ज्यादा वो चाहता है। और अगर दुख के मौके पे उसको तन्हा छोड़ दिया जाए, क्यों इतना ताजियत करने का, और क्यों इतना बीमार की बीमार पुरसी करने का, इतना सवाब क्यों रखा गया। इसलिए क्योंकि इंसान जब गम में है ना, परेशानी के अंदर है, उसको जाके तसल्ली देना, उसके पास जाके बैठना, ये उसके गम को हल्का करता है।
और ये यहाँ पे जहन्नुम के अंदर होंगे, ऐसे सांस ले रहे होंगे जैसे गधा सांस खींचता है और फिर निकालता है ना, अंदर डालने वाली आवाज का नहीं बताया गया, बाहर वाली आवाज का बताया गया, क्योंकि गधे की जो बाहर की आवाज होती है वो तेज होती है, जब अंदर खींचता है सांस तो उस वक्त हल्की होती है, फिर इतनी जोर से चीखता है, तो ये उनकी चीखों की आवाजें होंगी, जलने का अजाब और तन्हाई का अजाब। अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो इतनी तकलीफ में होंगे, अब उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, ये वो है ना जो दुनिया में सुनते नहीं थे अल्लाह की बात, आज अल्लाह ताला ने इनको ऐसे ही अकेला कर दिया। ज़फ़ीर एक्सेल करेंगे इतनी, और सूरह मुल्क के अंदर जहन्नुम के लिए भी आता है कि उसके ज़फ़ीर और शहीक, उसकी आवाजें, उसका दहाड़ना होगा, उसकी चीखें होंगी और अंदर इनकी चीखें होंगी। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, जो हमारी आयात को झुठलाते हैं तो उनके लिए ऐसा अजाब होगा कि उनकी जिल्दें जल जाएंगी, तो फिर हम और नई जिल्दें ले आएंगे, फिर और नई जिल्दें ले आएंगे, फिर और नई जिल्दें ले, हर दफा जिल्द जलेगी और हर दफा नहीं मिलेगी। ये ऐसी बला है जहन्नुम कि ना इंसान को जीता छोड़ेगी और ना मौत आएगी उसमें, तो ये एक जानवर की तरह वो भी चीख रही है और उसके अंदर लोग भी चीख रहे हैं, और कोई कान पड़ी आवाज कुछ नहीं सुन रही, दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है किसी का, कोई अपनी चीखें हैं उनकी। और दूसरा वो कहते हैं कि ये भी मतलब हो सकता है कि लहु फिया जफीरो, ये तो आबिद के लिए और माबूद के लिए, वहम फिया ला यस्मान, और वो उसमें सुनते नहीं, यानी जो जो पूजा कर रहे थे वो चीख रहे हैं और जिनकी पूजा की जा रही थी वो सुनते ही नहीं होंगे, अब वो क्यों सुनेंगे, वो तो वो अजाब के अंदर। तो इतना जहन्नमियों का शोर होगा, इतना वावेला होगा, अल्लाह अकबर। ये आयतें बहुत, ये जो जहन्नम की आयत होती है ना बहुत हैवी होती है, बहुत ज्यादा इंसान की तबीयत के ऊपर बहुत बोझल होती है, तो अल्लाह ताला साथ ही उनकी बात फरमाता है कि जो इस चीज से बच जाएंगे, इन लदीना सबकत लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादुन। इंसान फिर कहता है ना कि मैं क्या करूं, मैं इस चीज से कैसे बच जाऊं, कितनी टेरेबल सिचुएशन में ये लोग, तो जो बेशक वो लोग जो पहले हो गए इनके लिए हमारी तरफ से हुस्ना, अल्लाह ताला की तरफ से भलाई लिख दी गई, वो इनसे बहुत दूर होंगे, वो इतनी दूर होंगे कि उनको तो ला यस्माउना हसीसा, उनको तो इसकी आहट भी नहीं पहुंच रही होगी। तो अल्लाह ताला ने वो जो नेक काम करने वाले हैं ना, देखिए जो एक्सीलेंस के ऊपर काम, हुस्ना क्या है, एक्सीलेंस, लिल्लजीना अहसनुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरह यूनुस में, जिन्होंने एक्सीलेंस के लेवल पे काम के लिए किए उनके लिए हुस्ना है, भलाई है, वह ज्यादा और इससे भी ज्यादा उन लोगों के लिए लिख दी गई है, अल्लाह ताला ने फरमाया सबकत, तय हो गई है उनके लिए, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया है कि जो अल्लाह की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने वाले हैं, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए कोशिश करने वाले हैं, आखरत में तो उनको अजर मिलना ही मिलना है, इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ता फरमाता है हयातुन तय्यबा के, यानी ऐसी जिंदगी जो पाक जिंदगी है, पुरसकून जिंदगी है, इत्मीनान वाली जिंदगी है, बरकतों वाली जिंदगी है, वो उनको मिलने वाली है, और वो इससे बहुत दूर होंगे, बहुत दूर रखे जाएंगे, किससे, ये सारे शोर हंगामे, ये सारी आग, बल्कि हत्ता के इसकी आहट भी नहीं सुनेंगे, सोचें एक जगह चीखें हैं, एक जगह शोर है, एक जगह आग है, अजाब है, टॉर्चर हो रहा है, और दूसरी जगह कुछ लोग हैं बहुत दूर है इससे, उनको आहट भी, एक होती है ना कदमों की आहट, हल्की आवाज, वो भी नहीं पहुंच रही, क्योंकि ये जो चीखने की आवाज है ना, ये भी इंसान की तबीयत के ऊपर इतनी भारी होती है, आप कहीं चीखें सुन लें, कहीं को किसी को टॉर्चर हो ना, आपसे एक मिनट भी बैठा नहीं जाएगा, आप चैन नहीं कर सकेंगे, आप मजा क्या, मजा तो दूर की बात है, चैन ही नहीं आएगा, कहीं किसी के कराहने की सुन लें, किसी किसी पेशेंट के चीखने की सुन लें, या किसी टॉर्चर सेल में किसी को टॉर्चर हो रहा है उसकी सुन लें, इंसान पढ़ के भी नहीं नींद आती उसके बाद,
तो कहां उनकी चीखें सुनना। तो ये तो खुद ही एक अजाब होता अगर किसी को सुन जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे मुबादून दूर रखा हुआ है, बहुत दूर है। अल्लाह अकबर के अदना तरीन एहसास हसीस किसके लिए, अदना तरीन एहसास फिजिकली जो किसी को पहुंच जाए, इससे भी नहीं पहुंचेगी लाइट साउंड भी। अल्लाह अकबर, वहम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और वो होंगे उसमें जो वो ख्वाहिश करेंगे उसमें हमेशा रहने वाले। यानी फी फी है ना, फी का मतलब है अंदर, डूबे हुए होंगे, गर्क होंगे किसमें, एक अच्छी सेंस में। अब जिन चीजों की वो उनको ख्वाहिश थी, जो आपकी ख्वाहिश है ना, आपकी ख्वाहिश ये है औलाद हो, आपकी ख्वाहिश ये है कि मतलब हर एक बंदे की अपनी डिफरेंट ख्वाहिशात होती है, जो जिस किस्म की भी ख्वाहिश होगी वो वहां पे पूरी होगी। तो वो उन ख्वाहिशात के अंदर डूबे होंगे, उनको क्या होश, उनको क्या हो रहा है, किसी को क्या नहीं हो रहा, किसका टॉर्चर है, किसका ये है। वरना अल्लाह रहम करे, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी हम न्यूज़ सुन लेते हैं ना जो ऐसी परेशानी वाली होती है, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे, तो उससे ही इंसान की तबीयत इतनी बोझल रहती है कि सारा दिन ना खाने को दिल चाहता ना पीने को, दिल इतना उदास रहता है। तो अगर इनको तो, ये सिर्फ न्यूज है, अभी हम ना कुछ उनकी बात सुन रहे हैं ना देख रहे हैं, सिर्फ एक न्यूज पता चलती कि ऐसा हो गया तो हमारी हालत गैर हो जाती है। कहाँ इनको उनकी बातें सुना दी जाए, दुनिया का तो कोई अजाब आखरत के इस जहन्नुम के अजाब की बराबरी कर ही नहीं सकता। लेकिन हम छोटी छोटी बात पे भी देखें, इंसान की तबीयत है ना वो सेंसिटिव होता है, तो अगर वहां की कोई भी टॉर्चर की बात इनको सुन भी जाएगी तो इनका तो सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इनको इतना दूर रखा हुआ है, ये अपने मजे कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, इतना दूर रखा हुआ है वो अपने मजों के अंदर है, वो अपने ऐश में आराम में है। और खालिदून, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है, वो खालिदून हमेशा रह रहे हैं, इन्हीं ख्वाहिशात पूरी हो रही है, मजे हैं, लज्जतें, नेवर एंडिंग। जब वो स्टोरीज में हम पढ़ते थे ना, जो स्टोरी एंड होती थी वो उसमें लिखा होता था, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, इस दुनिया में तो ये पॉसिबल नहीं, ये कहानियों में लिखा ही जाता है, दुनिया में पॉसिबल है ही नहीं हैप्पीली एवर आफ्टर, ये सिर्फ जन्नत में, यहाँ पे तो एक मसला नहीं होगा, उसको खत्म करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। ला यज़ुरुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर, उनको नहीं गमनाक करेगी जो फ़ज़ाए अकबर है। फ़ज़ाए अकबर क्या है, क्या क्या चीज नहीं उनको घबराएगी, क्या चीज है कि जो उनको परेशान नहीं करेगी। बास कहते हैं ये नफ़खे की बात हो रही, नफ़खा यानी जो सूर फूंका जाएगा उसके ऊपर जो घबराहट होगी, लोग बेचैन हो जाएंगे, वो नहीं होगी। लेकिन क़यामत के बाद तो ऐसे लोग जिंदा ही नहीं होंगे। आज कहते हैं कि उसके बाद जो उठ के हशर के मैदान में घबराहटें होंगी, लोग परेशान हाल होंगे, यौमा या फिर मरु मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी लिकुल इमरी इन मिनहुम यौमा इतिन शानु युगनी, उस दिन इंसान भागेगा बाप से, बेटे से, बीवी से, परेशान होगा, उसको अपनी परेशानी इतनी होगी, किसी और का हाल क्या पूछेगा, उनको ये नहीं होगी। उस दिन उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, वो बिल्कुल ऐसे जैसे कि बड़े रेस्ट करके आए हैं ऐसे उठेंगे, उनको बड़ी ये घबराहट कुछ भी उनको डराएगी नहीं, उनको परेशान नहीं करेगी। और वो ये इसमें ये भी है कि फजल अकबर यानी जितने मरहले हैं, जितने मरहले हैं उठने से लेकर जन्नत पहुंचने तक, सारे मरहले तो घबराहट के है ना। देखिए कयामत किसी ऊपर बरपा नहीं भी होती, लेकिन जब जब कब्रों से उठेंगे, वहां से लेकर जन्नत में पहुंचने तक कहीं मीजान है, कहीं पुल सिरात है, कहीं सूरज करीब है, कहीं इंतजार है अब कब हमारा फैसला शुरू हो, कहीं ये है कि जन्नत जहन्नुम के फैसले दिए जा रहे हैं, कहीं ये है कि हाथों में आमाल नामे पकड़ाए जा रहे हैं, दाएं में आएगा कि बाएं में आएगा, हर तरह की घबराहटें हैं।
अब उन सारी घबराहटों में ये लोग बिल्कुल घबराहट से पाक, घबराहट से आजाद, इनके ऊपर कोई घबराहट नहीं है। और देखिए जब उठते ही हैं तो क्या है, सुभान अल्लाह व ततलक्काहुमुल मलाइका, इनका इस्तकबाल करते हैं फरिश्ते। तलक्का कर मतलब है ग्रीट करना, मिलना, इस्तकबाल करना। और ये भी है कि किसी को मिलना और उसको लेकर चलना, ये भी है। तो वो उस एंजाइटी फजा से ना, एंजाइटी और पैनिक और ये जो, अच्छा हमें तो छोटा सा, अल्लाह हम तो इतने कमजोर लगे, छोटा सा टेस्ट ही होता है ना, हमें एंजाइटी शुरू हो जाती, आए नींद नहीं आई, इतने पैनिक हो रहे हैं, ये मसल, अल्लाह हम तो छोटे छोटे इम्तिहानों के ऊपर ऐसे हो जाते हैं। वो तो बड़ी बातें हैं, जब क्यामत के दिन इंसान उठेगा अपनी कब्र से तो कितने बड़े मरहले होंगे, क्या वो समा होगा उसमें, सोचें कोई लोग खड़े हुए, फरिश्ते खड़े हुए ग्रीट करने के लिए, इस्तकबाल किया जा रहा है और उनको एस्कॉर्ट करके लेके जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे ना आप सोचें, आप हमारे जैसे जो आम लोग एयरपोर्ट पे उतरते हैं, आए अभी सामान लेना है, सामान पूरा पहुंच जाए, इमिग्रेशन पे खड़े होना है, फिर वो पता नहीं क्या हमसे सवाल पूछे, फिर उसके बाद हमें लेने कोई आ जाए, फिर उसके बाद यानी बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें हैं उसमें खड़े हुए। और कई वीआईपी होते हैं, उनके लिए जो वो सीढ़ियों से जहाज की उतरते हैं, उन्होंने आगे रेड कार्पेट बिछाए होते हैं, दोनों तरफ कतारें लगी होती हैं, वो उनको सलाम कर रहे होते हैं, उनके लिए वही गाड़ी खड़ी होती है ना, उन्होंने कहीं लाइन में लगना, ना उनको कोई सलाम अपने सामान की परवाह है, ना उनको कोई इमिग्रेशन का वो है, वो गाड़ी में बैठते हैं और वो गाड़ी उनको लेकर चल पड़ती है, आगे पीछे उनके गाड़ियां हैं और उनके इस्तकबाल हो रहे हैं और पूल उन पे निछावर हो रहे हैं, ये भी इस्तकबाल होते हैं। दोनों में फर्क है, ये तो मैं दुनिया की ऐसी छोटी सी एक मिसाल से आपको बता रही हूँ कि कयामत के दिन कोई लोग ऐसे भी होंगे कि ततलक्का हुमुल मलाइका, उनको फरिश्ते उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, फरिश्ते उनको ले लेके आगे चल रहे हैं, हाँ भाई कुंतुम, ये तुम्हारा दिन है, दिस इज योर स्पेशल डे, इसका तुमसे वादा किया गया था, स्पेशल डे है आज, इट्स योर डे। जैसे कहते हैं ना किसी की शादी होती है तो चाहे 1,000 मेहमान बुलाएं, वो उन 1,000 मेहमानों का दिन नहीं होता, वो उस दूल्हा और दुल्हन का दिन होता है, इज योर डे। तो वो कहेंगे आज तुम्हारा दिन है। वो देखो आगे से, जैसे अब दुनिया के अंदर भी होता है ना, जो बहुत ही वीआईपीज होते हैं उनके आगे से लोगों को हटाया जाता है और उनको ले लेके वो भाग भाग के आगे जा रहे होते हैं, दूसरे लोग पीछे खड़े हुए होते हैं, वो अभी वो इंतजार में है उनकी बारियां कब आएंगी और उनको लेकर जाया जाएगा, इनको तो वो लेके भी घर तक छोड़ आते हैं, इनको भी इसी तरह सुभान अल्लाह कि इस्तकबाल करते हुए लेकर जाते हुए उनको खुशखबरियां सुनाते हुए, तो इनको क्या परेशानी होगी जब उनके ऊपर अल्लाह ताला के अर्श का साया हो जाए, जिनके ऊपर जिनको नूर के मिंबरों पे बिठाया जाए, जिनके हिसाब आसान हो जाए, जो पुल सिरात से बिजली की सी तेजी से गुजर जाए, जिनके दाएं हाथ में अमाल नामे आ जाएं, जिनकी नेकियां भारी हो जाएं, जिनको अल्लाह ताला पर्दे में उनसे बात करे, उनके पर्दे फाश ना करे, उनके पर्दापोशी कर ले, उनके लिए तो स्पेशल ही स्पेशल हो रहा है ना सब कुछ, वो सबसे पहले जन्नत में भी चले जाएं, अभी लोग अपने हिसाब किताब में फंसे हुए हैं वो वहां पे पहुंच भी गए, कई लोग होंगे ना जो के उस 50,000 साल के दिन में अभी अपने हिसाब किताब में ही खड़े होंगे, और कोई होंगे जो हदीस में आता है कैलूला के वक्त तक, जितना कैलूला का वक्त हो ना, सुबह से कैलूला के वक्त तक वो जन्नत में भी पहुंच जाएंगे, उनके लिए इतना जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाए। तो वो इस तरह से उनको लेके जाएंगे, तो जब वो जन्नत में भी जाएंगे ना, तो वहां पे भी फरिश्ते आगे खड़े हुए इस्तकबाल करने के, या उनको मल्ला दी कुतुब तो आ, तुमसे वादा किया जाता था ना इस दिन का, अल्लाह ताला ने वादा किया, कुरान में वादे आए, रसूलों ने वादे किए, लोगों ने बताया, अल्लाह ने वादा किया हुआ एक दिन ऐसा है। तो ये है तुम्हारे वो दिन जिसका तुमसे वादा किया जाता था, जिसकी बातें हम सुनते थे, अल्लाह अकबर। तो देख ले अब ये कैसे खुशकिस्मत है, घबराहट के मौके पे भी घबराहट नहीं, हर मरहले में जहां पे लोग परेशान हैं, जहां पे लोग मुश्किल में पड़े हुए, ये भागे चले जा रहे हैं। अल्लाह ने इनके लिए लिख दिया ना हुस्ना। मैंने जैसे आपको बताया कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है लिल्लदीना अहसनु, उन्होंने अहसन किया, उन्होंने एक्सीलेंस के लेवल का काम किया, उनके लिए हुस्ना है। फिर क्योंकि उनके लिए हुस्ना कैसे है कि उनके लिए हुस्ना कैसे है, क्योंकि वो भी तो हुस्ना करते थे ना, वो भी तो सबसे ऊपर के लेवल के काम करते थे, तो उनके लिए हुस्ना अल्लाह ताला ने तैयार किया हुआ है। अल्लाह ताला ने उनके लिए बेस्ट तैयार किया है, क्योंकि वो बेस्ट करते थे, वह ज्यादा। और ज्यादा क्या है, यानी अल्लाह का दीदार है उनके लिए, उनके लिए उनको हाईएस्ट लेवल भी जन्नत के मिलेंगे और अल्लाह का दीदार भी मिलेगा। यौमा नतवी सेमा कतई सिजिन लिल कुतुब, जैसे वो दिन ऐसा होगा कि आसमानों को लपेट दिया जाएगा, जैसे कि स्क्रोल होता था पहले जमाने में, स्क्रोल होता था उसको लपेट दिया जाता था, यानी कागज ऐसे नहीं होते थे ना, बल्कि उसको गुलाई के अंदर आपने देखा भी होगा इस तरह गोल करके और ऐसे बंद कर दिया जाता था, तो क्योंकि उस वक्त कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं होती थी। तो इस तरह से अल्लाह ताला कयामत के दिन तमाम आसमानों को और जमीनों को दाहिने हाथ में लपेटे होगा, और वो अल्लाह पाक बरतर जात वो ये कर सकता है कि बुखारी शरीफ में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला कयामत के दिन जमीनों को मुट्ठी में ले लेगा और वो इन आसमान को अपने दाएं हाथ में ले लेगा। और फिर अल्लाह की कुदरत देखिए ना, कि ये सारा सिस्टम जो सातों आसमानों का, वहां की कुल मखलूक, सातों जमीन, जमीने भी सात, और इसकी कुल मखलूक, और अल्लाह ताला अपने दाहिने हाथ में लेगा। सोचिए ये द होल यूनिवर्स, हम पता नहीं कितने और यूनिवर्सेस हैं, वो तो नहीं हम जानते, मगर हदीस में आता है ऐसे जैसे राई का दाना हो, ऐसे जैसे छोटा सा दाना हो, इस तरह अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत को हम तो कभी सोच ही नहीं सकते। सिजिल से क्या मुराद है, किताब वो रजिस्टर जो लिखा जाता है, लिल कुतुब जो लिखने के लिए होता है, उसको इसकी तरह अल्लाह ताला इतना छोटा सा, जैसे हम कागज को छोटा सा अपने हाथ में मुट्ठी में ले लेना, इस तरह अल्लाह ताला करते हैं। कमा बता ना अव्वला खल्क नुईदुहु, जैसे अल्लाह ने पहली दफा पैदा किया इसी तरह फरमाया हम दोबारा यादा कर देंगे, जैसे तुम पहली दफा थे, कैसे थे पहली दफा, बगैर खतने के, बगैर लिबास के, बगैर जूतों के, नंगे पैर, नंगे बदन, बेखतना, ऐसे थे ना, तो उसी तरह अल्लाह ताला दोबारा खड़ा कर देगा। अब देखिए हम इंसान किसी मुसीबत में होता है और कुछ भी नहीं उसके पास, हो कोई वॉलेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके सारे पर्स वगैरह सब कहीं नहीं मिल रहे, अब वो क्या करता है, किसी मुश्किल में आ जाए, कोई उसको काम चाहिए हो, तो वो अपने रिंग उतार के दे देगा, अपनी घड़ी उतार के दे देगा, अपनी चेन उतार के दे देगा, कि मैं इस वक्त जो भी मेरी जरूरत है मैं इससे पूरी कर लूं, नहीं तो अपने जूते दे देगा, इन द एंड अपने कपड़े तक बेच देते हैं बास दफा लोग जब जरूरत हो तो। लेकिन सोचें कि इंसान के पास कोई चीज ही नहीं, कोई चीज, पैसों को तो छोड़ दे, पैसे तो दूर की बात, क्रेडिट कार्ड दूर की बात, पर्स और जायदादों के कागजात दूर की बात, बैंक बैलेंस और बैंक की चेक बुक्स तो दूर की बात, उसके पास तो तन के कपड़े तक नहीं, ऐसे वो नंगा खड़ा होगा, ऐसे वो बिल्कुल फकीराना हालत में होगा, जैसे वो पैदा भी हुआ था तो ऐसे ही नंगा आया था दुनिया, कुछ भी नहीं था उसके पास। अल्लाह हू अकबर। अब उस वक्त के अंदर सबसे बड़ी चीज और सबसे एक ही चीज, जो वाहिद चीज उसके पास होगी, उसका आमालनामा होगी, जिसको वो सारी जिंदगी इग्नोर करता रहा, तो वहां मरना, कोई और चीज है ही नहीं, सिर्फ वो ही है। वादा ना लेना, एक वादा है हमारे जिम्मे, एक वादा लाजिम है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला ने इसको अपने ऊपर लाजिम किया। अलैना का मतलब क्या, हमारे ऊपर वाजिब है, मैंडेटरी, अल्लाह के ऊपर कोई चीज मैंडेटरी नहीं, कोई कर सकता, मगर जिसको अल्लाह ताला खुद चाहे अपने ऊपर लाजिम करना, तो फिर अल्लाह ताला ने इसको अपने ऊपर की फरमा दी, ये वादा है कि ऐसा हो के रहेगा, ऐसा जरूर होगा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खड़ा करे जैसे पहली दफा उसने पैदा किया था, और वो इस पर कुदरत रखता है, ये जिम्मे है, और ये बात यकीनी बनाने के लिए बताया गया वादा, वरना अल्लाह की तो हर बात ही सच्ची है। अल्लाह अकबर, के कयामत आएगी ये वादा है, हशर कायम होगा ये वादा है, हिसाब किताब होगा ये वादा है, जन्नत जहन्नम के फैसले होंगे ये वादा है। सुभान अल्लाह, इन्ना कुन्ना फाइलीन, और इसमें ताकीदें देखें कितनी, बेशक हम ही हैं करने वाले। अल्लाह ताला ने किसी और पे भी नहीं डाल दिया कि कोई और करे तो वो शायद भूल ही जाए, नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया हम करेंगे, ये खुद अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया। यानी इस बात को तो कभी तुम भूल ही जाओ कि एक पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं क्या मत आनी है कि नहीं आनी, पता नहीं है सब कुछ सही भी है, यानी फॉरगेट इट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हो जाएगा तो फिर वापसी नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अगर तो देख के आ सकते होते तो फिर भी देख के आके फिर उसके बाद अपनी जिंदगियां बदल देते, फिर उस मुताबिक काम करते। असल तो गैब पे ईमान है ही ये कि यहां से बैठ के उसका यकीन ऐसे करो कि जैसे तुम देख के आए, और उसकी तैयारी ऐसे करो जैसे कि वो तुम्हारे सामने है, तब है बात। देख के आने पे तो फिरौन ने भी मान लेना। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया हम जरूर ये करने वाले हैं, वलकद कतबना फिस ज़बूर, और अलबत्ता तहकीक लिख दिया हमने जबूर में, मिम बाद इस जिक्र, इस जिक्र के बाद, जिक्र किसके बाद, कौन सा जिक्र, यानी नसीहत के बाद, जबूर में भी लिख दिया। जबूर एक तो मतलब जबूर का है कि जो दाऊद अलैहि सलाम के पास किताब आई उसका नाम जबूर था, उसमें क्या लिख दिया, जिक्र के बाद, नसीहत के बाद, अन्ना यरिसुहा इबादी सालेहून, कि इस जमीन के वारिस होंगे मेरे नेक बंदे, यानी ये जो जमीन है, ये दुनिया की जो जमीन है, मेरे नेक बंदे इसके वारिस होंगे। ये दाऊद अलैहि सलाम की जबूर में लिखा, ये जबूर की क्यों बात आई, इसलिए दाऊद अलैहि सलाम की जिंदगी आप देखें, अल्लाह ताला ने उनको वाकई वारिस बनाया जमीन का, और उनको बादशाहत दी ऐसी, अल्लाह ताला ने इससे साबित किया कि देखो अल्लाह ताला इस जमीन पे भी अपने नेक बंदों को बादशाहत अता फरमाता है, उनको इकतदार अता फरमाता है। दूसरा मतलब जबूर का है, जितनी भी सुहफ आए, जितनी भी किताबें आई, उन सब को यहाँ पे मुराद लिया गया कि उन सब में अल्लाह ताला ने लिख दिया मिम बाद जिक्र, जिक्र के बाद, जिक्र से मतलब फिर यहाँ पे क्या है, लौहे महफूज, लौहे महफूज में लिखने के बाद उनमें भी लिख दिया, यानी पहले लौहे महफूज में भी यही बात लिखी हुई है, और इन किताबों में भी जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई उन सब में भी ये बात लिखी, उनके जमीन के वारिस वो ही होंगे जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे। अब यहाँ पे जमीन की भी दो इंटरप्रिटेशंस की गई, मैंने पहले आपको जबूर के दो माने बताए जो मुफसरीन ने किए, अब अर्द के भी दो माने, एक तो जमीन, ये जो दुनिया की जमीन है, और एक जन्नत। जन्नत के तो वारिस नेक ही लोग होंगे, ये तो हमें कुरान भी कई जगह बताता है, लौह महफूज में भी यही लिखा और भी किताबों में भी, के जन्नत के वारिस अल्लाह के नेक बंदे। लेकिन इसके अलावा भी दूसरा माना अगर देखें कि ये दुनिया की जो जमीन है ये लिख दिया गया सारे सहीफों में, और लौहे महफूज में भी लिखा हुआ, लौह महफूज के बाद इन सहीफों में भी आ गया कि इस जमीन के वारिस अल्लाह के नेक बंदे बनेंगे। और ये आप देखें सूरह आले इमरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही ऊपर होगे अगर तुम ईमान वाले हो। तो हम देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयात उतरी, उस वक्त तो मुसलमानों के हालात बहुत ही मुश्किल थे, बहुत ही परेशानी वाले थे, लेकिन उसके बाद चंद सालों में क्या हुआ, जब तक हजरत उमर की खिलाफत आई तो मशरिक और मगरिब तक इस्लामी हुकूमत फैल चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने जमीन में भी इकतदार अता फरमाई, कहाँ तक मुसलमान चले गए। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे मशरिक और मगरिब, इस जमीन के मशरिक और मगरिब दिखाए, और कहाँ तक मुसलमान पहुंचेंगे अल्लाह ताला ने दिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये उस वक्त भी हुआ था, और कुर्बे कयामत पे भी, जब ईसा अलैहि सलाम भी आएंगे तो उस वक्त भी जमीन के मशरिक मगरिब में सब नेक लोगों की हुकूमत एक दफा दोबारा भी कायम होगी, इस्लाम का गलबा हो जाएगा। ठीक है,
और वैसे भी अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमाया, अम्मा मैं यनफाउन नास, जो जो लोगों को नफा देता है अल्लाह ताला उसको जमीन में हुकूमत देता है, करार अता फरमाता है, तो चाहे वो काफिर हो या मोमिन हो, वैसे भी ये कहा गया कि जो लोगों को नफा पहुंचाएगा। और आप देखें जो दुनिया में काफिर, आप सोच रहे होंगे कि उनकी हुकूमतें हैं, तो जो लोगों को नफा पहुंचाते हैं उनकी हुकूमतें भी हैं दुनिया में। आप वेलफेयर स्टेट्स देख लें, सब इन्हीं की हैं। तो लेकिन हाँ, जो अंजामे कार है, वल आकिबतुल मुत्तकीन, अंजाम मुत्तकी का ही होगा, जन्नत मुत्तकीनों को कोई मिलेगी। ठीक है, तो दोनों माने मैंने आपके सामने रख दिया है। वही एक बात को मगर समझ लेना चाहिए कि चाहे इकतदार मिले दुनिया में चाहे ना मिले, दोनों सूरतों में इम्तिहान ही है इंसान का। किसी का इकतदार दे के अल्लाह आजमा रहा है, किसी से लेके अल्लाह आजमा रहा है, किसी को गलबा दे के आजमाता है, किसी को मगलूब करके आजमाता है, किसी को बीमारी की सूरत में आजमाता है, किसी को किसी प्यारे की जुदाई की सूरत में आजमा लेता है, किसी के ऊपर माली परेशानी का इम्तिहान है, किसी को पर किसी को माल दे के अल्लाह आजमाता है। तो लेकिन बात असल में यह है कि इंसान अल्लाह के करीब हुआ या नहीं हुआ, ये असल है बात सोचने की। और जिसको इम्तिहान में डाल के अल्लाह अपने से करीब कर ले, वो अल्लाह ताला से और ज्यादा क्लोज हो गया, तो ये तो बड़ा मुबारक इम्तिहान है। और अगर इम्तिहान में पढ़ के इंसान अल्लाह से और दूर हो गया तो ये फेलियर है। तो हम देखेंगे हम जिस भी इम्तिहान में, किसी में तो होंगे, अब चाहे वो खुशहाली का है, चाहे वो बदहाली का है, चाहे वो अच्छे हालात का है, चाहे बुरे हालात का है, क्या अल्लाह से मैं करीब हो रही हूँ या दूर हो रही हूँ? जिस इम्तिहान में आप अल्लाह को पुकारे, उसकी याद आपके दिल में बसी रहे और आप उसके सामने गिड़गड़ाएं, आप उसे कुर्ब महसूस करें, ये कामयाबी है, चाहे आप खुशहाल है या बदहाल है। और ज्यादातर ये होता है कि इंसान खुशहाली में कम ही अल्लाह के आगे झुकता होता है, बीमारी हो, तंदुरुस्ती हो, हालात खराब हो, तो बड़ा अल्लाह अल्लाह करता है। तो जिसको हाँ खुशहाली मिली हो और दाऊद और सुलेमान अलैहि सलाम की तरह वो फिर भी अल्लाह को याद रखे, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम देखते हैं कि जमीन के वारिस ये जबूर में भी और सुहुफ में दूसरों में भी, इन्ना फी हाज़ा लबलाग़ुन लिक़ौमिन आबिदीन, इसमें है, किसमें, इस कुरान में है बलाग। बलाग को क्या कहते हैं? उस पैगाम को जो मुकम्मल हो और इनाफ हो, काफी हो, और जो पहुंच जाए अपनी जगह पे, कम्युनिकेशन पूरी हो जाए। कभी कभी होता है ना, पैगाम मुकम्मल भी है, काफी भी है, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं, डिलीवरी नहीं हो सका। ये वो पैगाम है जो बलाग है, जो पहुंच गया, मुकम्मल है, काफी है, लिकौमिन आबिदीन, उस कौम के लिए जो इबादत गुजार है। यानी ये कुरान इतना पावरफुल मैसेज है, इतना इनाफ है इंसान के लिए, इनाफ वेकअप कॉल भी है और इनाफ है हिदायत के लिए भी, कि अगर सिर्फ इसको, एक कुरान को ही देख लिया जाए, इसको ही पकड़ लिया जाए, तो इंसान को हिदायत के रास्ते मिल जाए। लेकिन ये उनके लिए है, और हाँ जिनको बहुत मुश्किल हालात भी है ना, आजमाइशें भी हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि देखिए जब इस कुरान की तरफ आ जाएंगे तो इसके अंदर वो मैसेज है, इसके अंदर वो जो बलाग है, इसमें वो काबिलियत है कि इंसान को खड़ा कर दे। जब इंसान गिरने लगे, जब इंसान हिम्मत हारने लगे, जब इंसान के हौसले पस्त होने लगे, तो इसके अंदर है वो पैगाम बलाग का, बलाग मुकम्मल और काफी आपके लिए, इनाफ, लेकिन लिकौमिन आबिदीन के लिए, सबके लिए नहीं। देखिए ना, आ एक जगह रोशनी है, रोशनी बड़ी फायदेमंद चीज है, उसमें हम चीजें नजर आती हैं, लेकिन अगर एक इंसान की अपनी आंखें अंधी हो तो रोशनी जितनी मर्जी हो जाए वो क्या फायदा उठाए, इसको तो फिर भी नजर नहीं आना। लिहाजा ये तो बलाग है, मगर अगर इंसान ही आबिद नहीं है, अल्लाह के आगे झुकने वाला नहीं है, खुशू खुजू से अल्लाह के आगे फरमाबरदारी करने वाला नहीं है, तो उसको ये फायदा नहीं देगा। फिर आप सिग्नल हैं हवा में, आपके पास एंटीना ही नहीं है, सिग्नल आप कैसे रिसीव करेंगे? तो ये हाजा, ये कुरान जो है ना, ये इबादत करने वाले, जो अल्लाह की गुलामी करने वाले, उसके बंदे बन के रहने वाले, उनके लिए तो काफी ये मैसेज, बहुत इनाफ है ये मैसेज। देखिए कितनी सारी बातें हमने सीखनी है, एक एक सबक में कितनी बातें सीखते हैं। लेकिन जो अल्लाह की इबादत से भागने वाले, जिनको परवाह नहीं है, उनको फिर इस कुरान की भी परवाह नहीं। जो अल्लाह की गुलामी में आना ही नहीं चाहते, उनके लिए यही प्रॉब्लम है। हम क्यों किसी के गुलाम बन के रहे? तो गुलामी किसी और की तो कर ही रहेंगे। अगर अल्लाह के गुलाम नहीं है ना, तो अल्लाह ताला ने ये इंसान के अंदर जज्बा डाला है कि गुलामी का, कि किसी की ना किसी की गुलामी जरूर करे। तो या तो फिर वो मटीरियलिज्म के गुलाम होंगे, और आज बहुत बड़ा ये खुदा बना है मटीरियलिज्म, मादा जो है, मादियत परस्ती कहते हैं ना, परस्ती मतलब पूजना, मादे को पूज रहे लोग। तो मटीरियल के गुलाम होंगे, या फिर वो किसी इंसान के गुलाम होंगे, या पैसे के गुलाम होंगे, या अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होंगे, अपने नफ्स के। जो बड़ा कहते हैं ना, हम किसी के गुलाम नहीं, वो फिर अपने नफ्स के गुलाम होते। अगर अल्लाह के बंदे नहीं बन के रहोगे, तो किसी के तो बंदे बने ही हुए। तो लेकिन ये कुरान सिर्फ उनको फायदा देगा जो अल्लाह के बंदे बन के रहते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन, और नहीं हमने भेजा आपको मगर रहमत बना के जानों के लिए, जहान वालों के लिए। अब आप देखें, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हमने नहीं भेजा आपको। देखिए सब चीजों की नफी कर दी, किसी और चीज के लिए नहीं भेजा सिवाय एक चीज के, कि आप रहमत बने सारे जहान वालों के लिए। और आपकी सबसे बड़ी रहमत क्या है? हिदायत का पैगाम जो आपके जरिए आया, जिससे इंसानियत हमेशा की आग में जलने से बच जाए। कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी रहमत। और लिल मोमिनीन नहीं सिर्फ कहा गया, आलमीन, जहानों के लिए। मोमिनों के लिए तो है ही है, क्योंकि उनको हिदायत का पैगाम मिल गया, उनकी जान बच गई उस अजाब से। इतनी बड़ी रहमत है ये। काफरों के लिए भी रहमत है, इसलिए कि उनके लिए भी तड़पते थे, उनकी भी खैर ख्वाही करते थे, उनके लिए भी रातों को उठ उठ के दुआएं करते थे, वो उनके लिए भी तड़पते थे, उनके लिए भी दर्द रखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की वजह से उनके ऊपर अजाब नहीं आया। ये कुरान कहता है सूरह अनफाल में कि अजाब इसलिए नहीं आ रहा कि आप इनके अंदर हैं। तो जब तक पैगंबर उनके अंदर हो, तो अजाब नहीं आता। तो आपकी जात उनके लिए बेरहमत। इसी तरह ना सिर्फ इंसानों के लिए, दीगर मखलूक के लिए भी। आप देखें जिन्नात को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके तबलीग फरमाई, तो उनके लिए भी आप रहमत हो। फरमाया मुझे सारी मखलूक की तरफ भेजा गया, तो जब इसका मतलब मखलूक की तरफ भेजा गया, तो सारी मखलूक अल्लाह ताला के सिवा तो सब चीज मखलूक है, तो सारी कायनात ही मखलूक है, सब के लिए आप रहमत है। और हम ये भी देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन जानवरों के साथ, आपकी रहमत को हम देखते हैं कि जब ये फरमा दिया ना कि छुरी भी तेज कर लिया करो जब किसी जानवर को ज़िबा करना हो। एक जानवर को ज़िबा कर रहे, दूसरे के आगे ना सामने ना उसको ज़िबा करो, ये रहमत ही तो है। एक ऊंट ने आके शिकायत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मालिक के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक को बुलाया था और उसको झिड़का था, ये तुम क्यों इसके साथ ऐसे कर रहे हो। आप देखें कि इवन, यानी एक वो सहाबी हैं, वो चिड़िया के बच्चों को ले आए थे और चिड़िया उसके ऊपर गिर गई थी, आप सल्लम ने कैसी आपकी रहमत थी जब वो आपके पास लाए थे, तो आपने उससे भी रहमत की बात बताई थी। और आप देखें कि ये रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम है, और अपनी उम्मत के लिए तो बेतहाशा है। जब उनके लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं कि फरमाया सब नबियों को एक दुआ दी गई, जो अल्लाह ताला ने अल्लाह का वादा कि उसको कबूल करेगा, सब ने अपनी दुआएं मांग ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत के लिए दुआ रखी कि मैं वहां जाके अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। अपने लिए ही मांग लेते दुनिया में, अपने बच्चों के लिए, अपने सहाबा के लिए मांग लेते, अपनी बीवियों के लिए मांग लेते, लेकिन वहां के लिए रखी। अपनी बीवियों के साथ इतने अच्छे थे, इतने ज्यादा रहमत और शफकत करने वाले थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुमैरा कहते थे, उनका निक नेम रखा था, प्यार से मोहब्बत से बीवियों से मशवरा किया करते थे। वो उनको ये शर्म नहीं आती थी कि मैं अपनी बीवी के लिए बारे में मोहब्बत का इजहार कर दूं, लोग क्या कहेंगे, आज बीवी का गुलाम है ये, है आज तो ये कह देंगे ना। किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है, फरमाया आयशा। इतनी मोहब्बत, यानी ये है ना, मोहब्बत का इजहार करते थे घर वालों के लिए भी। आप देखिए बाज दफा लोग दीन में आ जाते हैं तो इतने सख्त हो जाते हैं, घर वालों पे सबसे ज्यादा सख्त होते हैं। घर में एंटर होंगे तो ऐसा लगता है कोई शेर आ गया घर में, पता नहीं यहाँ कोई, पता नहीं कौन आ गया, कोई जिन आ गया, सारे दुबक जाएंगे। हाय पता नहीं वो बाप है या क्या है, वो हस्बैंड है या क्या, जिसे इतना डरा जाए। आपसे सलाम तो ऐसे नहीं थे। कहते हो अगर सीखना है ना किसी से, कोई भी हमारा आइडियल नहीं, हम नहीं कह सकते जी देखिए ये कितनी अच्छी बात होती थी, नहीं हम नहीं उसको अच्छा कह सकते, क्योंकि मेरे नबी ऐसे नहीं थे। रहमतन थे वो, रहमतन नकिरा है, नकिरा में डाइवर्सिटी होती है, हर जमाने हर सिचुएशन हर वक्त हर हर तरह के लोगों के साथ रहमत। आप देखें वो बूढ़े हैं अबू कुहाफा, तो जब अबू बकर सिद्दीक उनको लेकर आ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम लाने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनको बुजुर्गों को क्यों तकलीफ दी आपने, मुझे कहा होता मैं खुद आ जाता। ये एक आयत है ना, मैं इसको इसको मैं इसका हक नहीं अदा कर सकती, किसी का भी नहीं कर सकती, मगर इस आयत के अंदर एक जहान है। मैं आपको क्या क्या बताऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बातें, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वबिल मुमिनीना रऊफ रहीम, मोमिनों के साथ तो रऊफ रहीम है, उनके ऊपर गरां गुजरती है, गरां गुजरती है। अजीजुन अलैहि मा अनिततुम, जो चीज तुम्हें परेशान करे ना, जो तुम्हें मुश्किल में डाले, वो उनके ऊपर इतनी गरां गुजरती है, वो हरीस है तुम्हारे लिए खैर के। यानी आप खुद सोच लेना कि जो मिसवाक है, फरमाया मुझे अपनी उम्मत पे मुशक्कत का अंदेशा ना होता तो मैं कहता हर नमाज से पहले मिसवाक करो, कि मेरी उम्मत को ना मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर मैंने कह दिया कि हर नमाज के साथ मिसवाक करा करो। तो यानी कितनी छोटी छोटी बातों का भी एहसास रखना कि जो है ना मेरी उम्मत मुश्किल में ना पड़ जाए। तरावी को क्यों नहीं पढ़ाया आके जमात से, हर दिन क्यों नहीं, हालांकि सहाबा आगे पढ़ने को तैयार थे, खड़े इंतजार करते रहे। फरमाया अगर मैं पढ़ लेता, मुझे ये अंदेशा हुआ कि कहीं अल्लाह इसको फर्ज ना कर दे तो मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल हो जाएगी, कैसे पढ़ेंगे वो। अब हमने ही तरावियों को बेशक हम फर्ज कर लें या उस तरह से करें, लेकिन आपसे सलम ने नहीं किया। कितनी यानी सहल चाहते थे अपनी उम्मत के लिए कि आसानी हो जाए इनके लिए, आसानियां। जनाजा गुजर रहा है और रो रहे हैं, तो किसी ने कहा कि तो काफिर का जनाजा है, आप क्यों रो रहे हैं। फरमाया वो इंसान तो है ना, अल्लाह अकबर। बच्चों के साथ इतने शफीक है, अपने घर के बच्चों के साथ कैसे हैं कि वो जब हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा भागे आ रहे हैं, उनके पैरों के अंदर उनके जो कपड़े थे वो फंस रहे कि गिर ना जाए, तो मिंबर से उतर आए उनको उठा लिया। हजरत अब्बास के घर में गए, वहां पे बच्चे उनके साथ खेल रहे, एक बच्चे ने ऊपर पेशाब कर दिया, उसकी माँ घबरा गई कि हाय ये क्या, उठे कहते कोई बात नहीं, उठ के जाके उसको धो लिया, वापिस आए फिर बच्चों से खेलने लगे। आज का कोई बंदा कहता है आए हम इतनी शान हमारी, हम इतने बड़े बच्चों के साथ कोई बात भी करें हमें क्या, बच्चों को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते। हजरत अनस थे, उनके पास 10 साल रहे, हजरत अनस ने 10 साल खिदमत की। फरमाया कभी मुझे ये नहीं फरमाया था ये क्यों किया तुमने और ये क्यों नहीं किया, कभी नहीं डांटा। आप रहमत उनकी देखें। एक दफा घर से निकले, एक बच्ची आई है, उसके ऊपर डोल पकड़ा हुआ है, उसको पानी निकालना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ के लेके चल पड़े कि मुझे इसमें हेल्प कर। अल्लाह अकबर, जब किसी मौत का मंजर देखते थे तो रो पड़ते थे, इतनी शफकत थी अंदर। बच्चों को उठाते थे, प्यार करते थे। किसी ने कहा हमारे पास तो इतने बच्चे, हमने तो कभी नहीं उनको प्यार किया। फरमाया तुम्हारे दिल से अल्लाह ने रहमत ही निकाल ली तो मेरा इसमें क्या कसूर, मैं तुम्हारे दिल में नहीं है रहमत। पहले जमाने के अंदर लोग गांव वगैरह में होते थे, आज भी लोगों को पता होगा, वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते थे, वो कहते थे अगर हम प्यार करेंगे लोग कहेंगे कि ये क्या बच्चों को गोदों में बिठा के बैठा है, वो अपनी मर्दानगी के खिलाफ समझते थे इसको। अल्लाह अकबर। एक दफा पता चला कि कोई किसी ने अपनी बीवी को मारा है, हाथ उठाया उसके ऊपर, तो आपने फरमाया कि जो बीवी पे हाथ उठा था वो बदतरीन आदमी है। अब आज लोग सोचते हैं ना बीवियों को मारना इस्लाम में जायज है, जैसे कि इस्लाम ने इनको हुक्म दिया, इस्लाम को बदनाम करते हैं। लोगों ने कहा आप सकीफ वालों के लिए, इन्होंने हमारे पर तीर चलाए, आप इनके लिए बद्दुआ करें। फरमाया नहीं, मैं बद्दुआएं करने के लिए नहीं भेजा गया, मैं लानते करने के लिए नहीं भेजा गया, उनके हक में दुआ की। ताइफ वालों से पत्थर जब खाए थे, अल्लाह अकबर, वो कहते हैं उस जगह का नाम मुझे भूल गया, करमल मनाजिल है शायद, 3 मील तक जाके, 3 मील वहां तक वो उन्होंने अपने ओबाशों को खड़ा कर दिया था कि पत्थर मारो, वहां तक 3 मील तक, इतना इतने उन्होंने पत्थर बरसाए थे कि हमने आपका पैगाम तो सुनना है ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कभी जुर्रत ना करें कि हमारे पास कभी आए ये पैगाम लेके, तो हम ऐसा सबक सिखा के भेजते हैं कि कभी मुड़ के ही ना आए। और ये हाल हो गया था कि जूते चिपक गए थे खून से, इतना खून निकला था, सारी बॉडी से खून निकल रहा था, तो जूते चिपक गए। लेकिन उसके बाद क्या फरिश्ता आया और कह रहा है कि आप हुक्म दे तो मैं इनको पहाड़ों के दरमियान पीस दूं। तो क्या फरमाया था कि नहीं, हो सकता है इनमें से कोई ईमान लाने वाला हो जाए। अल्लाह अकबर। इंसान उस वक्त तो जज्बाती होता है, उस वक्त कहता है कि हाँ इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे कर रहे हैं, इनको पता चलना चाहिए, इनको सबक सीखना चाहिए। हम सबक सिखाने सिखाने में ही हम बहुत सारे जुल्म भी कर जाते हैं बाज दफा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का जर्फ देखें कि अभी उनसे पत्थर खाए हैं, लेकिन फरमाने नहीं, हो सकता है इनमें से कोई हो जो ईमान लाने वाला हो। आप अंदाजा कीजिए उनकी रहमत का, कि जो उनके लिए तड़प रहे हैं, जो सारा दिन सताते हैं उनके लिए तड़प रहे हैं कि ये आग से बचे। हम तो जरा सा बता के किसी को कहते ना जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जाके मरे, हमें क्या, ना सुने, एक दिन खुद ही पता लगेगा, लग पता जाएगा इसको। फौरन ऐसे बोलने लगते हैं ना, अल्लाह अकबर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखे, इवन दुश्मन जो था वो शैबा के बेटे थे उतबा और रबिया, वो उनको तरस आ गया था कि हाय, हालांकि वो इतने सालों से दुश्मनी कर रहे थे, उन्होंने देखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल, लहू लहान हुए, और उनके बाग में उन्होंने अपना गुलाम को भेजा के अंगूर दे के पानी दे के कि जाके उनको देकर आए, उनके बाग में पना ली थी। वहीं पे तो वो बात हुई थी कि जब वो गुलाम जो ईसाई गुलाम था अद्दास, उसने कलमा पढ़ लिया था। तो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो जो आलमीन के लिए रहमत, आलमीन के लिए। मैं कितनी भी बातें आपको सुनाओ ना, वाकयात भरे पड़े, भरे पड़े वाकयात, इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के वाकयात, वो कोई ऐसा नहीं है कि जो आपकी रहमत से महरूम। अब तुझे फतह मक्का किया और उस वक्त उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने कितना आपको सताया, कि इतनी यानी उस जगह पे रहना दूभर कर दिया, जो जगह इतनी प्यारी थी, इतनी महबूब थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जाते जाते भी फरमा रहे हैं मक्का, अगर ये लोग मुझे ना निकालते कभी ना यहाँ से जाता, इतनी महबूब थी, जिन्होंने वहां पे रहना दूभर कर दिया सिर्फ इस पैगाम की वजह से, उनको भी माफ कर दिया। मैं बातें तो बहुत सुना सकती हूँ आपको, लेकिन सारी बातों का खुलासा जो मैं एक बात जो करना चाहती हूँ, ये कि देखें आज हमारे लिए रहमत क्या है। हम तो खैर इतने ही माशाल्लाह आशिक रसूल और पता नहीं क्या क्या हैं कि हमने तो अपनी जानें हथेली पे रखी हुई हैं कि नबी के लिए तो उनकी नामूस के लिए तो हमारी जानें भी कुर्बान, और हमारे बैनरों पे पता नहीं क्या क्या लिखा होता है और हमारे नारे क्या क्या होते हैं, लेकिन हमारे एक्शंस क्या हैं? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस में हमारी रहमत क्यों नहीं नजर आती? हम उनके उम्मती हैं, बल्कि उल्टा हमारे साथ क्या है, हमारे में से जिसके पास जिस चीज की भी पावर आ जाए ना, जोर आ जाए, वो कहता बस जी मैंने आज दूसरे को छोड़ना ही नहीं है, आज तो मैं इसको इतना नचोड़ूंगा, इतना स्क्वीज करूंगा इसको कि इसको पता चल जाए कि मैं चीज क्या हूं और मेरे पास कितनी पावर है। लिहाजा वो चाहे किसी दफ्तर में एक क्लर्क की कुर्सी पे बैठा हुआ है, चाहे वो एक चपरासी है, चाहे वो एक टीचर है जिसके पास बच्चे छोटे छोटे मासूम पढ़ते हैं, वो उसको जिधर जिसको मौका मिल रहा है, चाहे वो एक अफसर बैठा हुआ है, चाहे वो एक इमिग्रेशन वाला है, वो कहता है कि मेरे पास अब ये आ गया ना, मेरे हत्थे चढ़ गया है, इसको तो मैंने अब जाने नहीं देना, इसको तो मैं ये याद करा दूंगा, नानी याद करा दूंगा, इसको पता चले कि मेरी पावर कितनी है। अब वो जितनी छोटी सी बेचारे की पावर होती उसको ही वो इतना दूसरे को दबाता है और नाजायज उस चीज को करता है कि बस अपनी धौंस जमानी। इसी तरह घरों में देख लें, चलो दफ्तरों को छोड़ दें, घरों में देख लें जिधर हमारी पावर चल रही है ना, हम चाहे वो एज मदर है, चाहे वो एज वाइफ है, चाहे वो एज हस्बैंड है, कई जगहों पे हस्बैंड बहुत ऐसे होते हैं, कई जगहों पे बीवियां बहुत सख्त होती हैं, वो कहते हैं बस आज तो बस रहमत को तो छोड़ो ही, अब सख्ती नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, चाहे सास है, चाहे कोई बहू है, चाहे जिस जगह पे जिसको मौका मिल जाता है, आप सल्लम को मौका मिला तो तब भी रहमत, ठीक है, हमें मौका मिलता है तो हम क्या है। बात यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, हमारे पास मौका आता है हम फिर हाथ से जाने नहीं देते, थोड़ी सी भी पावर मिल जाए सही बस आपे से बाहर हो जाते हैं, जुल्म पे उतर आते, कहते हैं मैं तो दिखाऊं तो सही इसको जरा। तो ये बताएं कि ये जो इतनी जाने निछावर करने के जज्बात हमारे अंदर हैं, इतने नारे हैं, इतनी बातें हैं, इतनी मोहब्बत की जो है ना इंतहाएं हमने छू ली हैं आप सरसलम के पीछे, आप मुझे बताएं कि हमारी जिंदगियों में कहाँ नजर आ रही है। वो तो रहमतल लिल आलमीन थे, हम तो किसी के लिए भी रहमत नहीं, ना अपने मुसलमानों के लिए, ना अपने रिश्तेदारों के लिए, ना अपने कम्युनिटी के लिए। हमारी कम्युनिटी में बेवाएं हैं, हमारी कम्युनिटी में यतीम बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो कि किसी मुश्किल के अंदर है, लेकिन हम तो कहीं पे भी कहीं नजर नहीं आ रहे हम कि हम रहमत का कोई निशान है। हमें तो एम्बेसडर्स ऑफ मर्सी होना चाहिए, रहमत के सफीर होना चाहिए, क्योंकि हम उन नबी के उम्मती हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है। ईसाई तो बहुत कहते हैं जी हमारे नबी जो है वो तो इतने रहमत और इतने शफकत वाले और इतने ऐसे थे, हमारे तो नबी के बारे में अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी है लिल आलमीन, सब जहानों वालों के लिए, सब इंसान क्या जिन क्या जानवर क्या हर के लिए। तो हम खास तौर पे हम जो गैर मुस्लिम मुल्कों में रहने वाले हैं, अगर हम जब भी घर से निकले तो अपने साथ रहमत का बैग भी साथ रख लिया करें, तो लोग खुद ब खुद इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इस्लाम से कि इस्लाम क्या चीज है, रिलीजन ऑफ मर्सी। ये जो आज बदनाम हुआ है ना कि ये हार्श हार्श दीन है, या इसमें तुम बस खून खराबा है, या इसमें कत्लो गारत है, या इसमें किस तरह ये पर्सपेक्टिव बना कैसे लोगों के जहनों में, कहीं तो कहीं हमसे कुताही हुई है ना, कहीं हमने गलत इंटरप्रेट तो किया है ना अपने दीन को, कि क्यों नहीं लोग कहते कि ये रिलीजन ऑफ मर्सी है, क्यों लोग कहते हैं ये सख्ती वाला दीन है, हमारे रवैयों में सख्ती है क्या, जब हम दीन की तरफ आ जाते हैं तो जो हमारी बातें हैं उनमें सख्ती हो जाती है क्या, या हमारे एक्शन सख्ती वाले हैं क्या, कहीं तो है ना कुछ। और ये हम खुद भी मानते हैं, हमें पता है कि कहाँ है, हम जानते हैं। तो जिनके मानने वाले हम हैं वो इतनी रहमत करने वाले कि अल्लाह ताला ने आलमीन के लिए रहमत के बना दिया, उनको गवाही दे दी, और इसके सिवा नहीं, यानी सिर्फ एक ही चीज है और वो रहमत ही रहमत है। तो हमसे लोग क्यों नहीं पहचानते कि हम उनके उम्मती हैं, मुसलमान रहमत और शफकत का नमूना क्यों नहीं है। हाँ अच्छा, हम तो रहमतुल लिल मोमिनीन भी नहीं है, ईमान वालों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी नहीं रहमत, किसी के लिए भी नहीं है, और काफरों के लिए तो आप छोड़ ही दें, उनको तो हम सोचते हैं कि जायज है इनके साथ सब कुछ करना, इनके साथ फ्रॉड करना भी जायज है, इनको झूठ बोलना भी जायज है, इन पर जुल्म करना भी जायज है। मुझे आप मुझे कोई एक मिसाल तो ला देना जरा, ये मेहरबानी करें कि मुझे एक मिसाल ला के दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के लिए शर चाहा कि अल्लाह इनका बेड़ा गर्क हो जाए, ये कुछ ना कर सके, ये बर्बाद हो जाए, उनको बददुआएं देते रहे, घर बैठ के बददुआएं देते रहे, और जोर कुछ नहीं चलता था तो चलो बददुआएं तो दी जा सकती थी ना, तो वो बददुआएं देते रहे और गालियां निकालते रहे उनको, या कितनी दफा उनको बुरा भला कहते हुए नजर आए, या उनकी बर्बादी की ख्वाहिशात करते नजर आए, और या मुसलमानों को यही कहते हुए नजर आए कि बस ये जहन्नुम में चले जाएं, या उनको कोई धोखा दिया हो, या उनसे कोई झूठ बोला हो, या उनपे कोई जुल्म किया हो, तो ये बताइए कहीं से तो मिसाल ले आए ना। हमने सारा जोर इसी पे दिया हुआ है कि बस सारे बर्बाद हो जाएं, काम हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ बातें हैं, सारे बर्बाद हो जाएं, खत्म हो जाएं, इनका सत्यानाश हो जाए, इनको इनका कुछ बाकी ना रहे, तब हमारे सीने में ठंडक पड़ जाएगी, ना दावत का काम करना है, ना रहमत के सफीर बनना है। ऐसा ही किरदार था आपके नबी का, यही हम दुनिया को दिखा रहे हैं, क्या वो आएंगे इस्लाम की तरफ, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम जिसको भी फिर फॉलो कर रहे हैं ना वो कम अज कम नबी का रास्ता नहीं है, और हमारे लिए अल्लाह ताला ने उनको उसवा हुसना बनाया। किसी उस्ताद को देख के, किसी शेख को देख के, किसी इमाम को देख के, कोई आपके कायद है उनको देख के, ये नहीं, ये हमारे लिए रोल मॉडल्स नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जिंदगी से लाके मिसालें बता दें तो समझ आ जाएगी। अब ये सारी बातें बता के अब एंड जो सूरा का है इसमें आखिर में मुशरिकीन को ईमान लाने की दावत दी गई है। ए नबी आप कह दीजिए मेरी तरफ वही की जाती है ये क्या कि तुम्हारा इला सिर्फ एक ही इला है। इन्नामा जो है ना कलमा हसर है यानी इसके सिवा और कोई बात नहीं है कि मैं एक नंबर वन पहली बात कौन सी कि मेरी तरफ वही की जाती है अपनी तरफ से नहीं बता रहे मेरी तरफ वही आती है अल्लाह का पैगंबर हूं। और दूसरी क्या बात जिसमें हसर है कि कोई है ही नहीं इला सिवाय अल्लाह के। फल अंतुम मुस्लिम हो तो क्या अब तुम इस्लाम लाते हो। अब सारी बातें जब तुम्हारे सामने क्लियर हो गई अब ये बताओ कि क्या तुम इस्लाम लाते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है मेरी उम्मत में से किसी ने भी मेरे बारे में सुन लिया यानी उसके इल्म में आ गया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे आखिरी नबी आए थे और वो ईमान लाए बगैर मेरे ऊपर ईमान लाए बगैर मर गया तो वो जहन्नुम में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्योंकि यहाँ पे बता दिया युहा इलैया मेरे ऊपर वही आती है आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आपकी रिसालत को मानना लाजिम है जहन्नुम से बचने के लिए। तो पूरा और इस्लाम का पूरा खुलासा क्या है इलाहुकुम इलाहु वाहिद। अब तुम मुस्लिम होते हो फरमा बरदार होते हो मानते हो कि नहीं मानते फइन तवल्लव फिर अगर ये नहीं मानते मुंह मोड़ लेते फकुल तो आप इनको कह दें आदंतुकुम अला सवा यानी अब ये ना बिल्कुल फाइनल बातें हो रही हैं कि अब सारा क्योंकि मक्की दौर का आखिर है मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया बराबरी पे। बराबरी पे यानी तुम मानो नहीं मानो तुम शिर्क के ऊपर अड़े रहो तुम वो अपनी पुरानी रविश पे ही रहो मैं तौहीद को नहीं छोड़ूंगा मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया बता दिया तुम्हारा तरीका गलत है अलल ऐलान बता दिए आजन तू जितना मुझे अल्लाह ताला जो वही की गई वो मैंने तुम तक पहुंचा दी कुछ नहीं छुपाया वह इन अदरी अकरीब अम्बाइद मातुआ दू और मुझे नहीं पता कि जो तुम्हारे से वादा किया गया यानी अजाब का वो अगर तुम इसी रविश पे चलते रहे वो वादा करीब है या दूर है। इस संबंध में आपसे सलम को गैब का इल्म नहीं था आपसे सलम नहीं बता सकते थे कि अब तुम्हारे ऊपर अजाब ही आना है या क्या होगा तुम्हारा अंजाम तुम पकड़े जाओगे इसी दुनिया में या आखिरत में तुम्हारी पकड़ होगी। इन्ना हुई आलम अल जहरा मिनल कौली की आलम अम्मा तक तुम मुझे तो इल्म नहीं है मगर अल्लाह ताला खुला छुपा सब जानने वाला है जहर को भी जानता है जाहिर की बात को भी और छुपी हुई बात को भी। अब हम सोचते हैं जाहिर की बात को जानना ये तो सारे ही जानते हैं तो फिर इसमें कमाल की क्या बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है सब जानते हैं मगर आप ये भी तो देखें एक बंदा बात करे तो हाँ जानते हैं दो करे तो हाँ जानते हैं तीन करे तो कंफ्यूजन होने शुरू हो जाती चार करे तो फिर समझ ही नहीं आती बात और पांच छह और दस और बीस और सौ करने लगे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती कि क्या कान पड़ी आवाज ही सुनाई नहीं देती समझ ही नहीं होती कि क्या कोई कह रहा है। लेकिन अल्लाह ताला सब आवाजों को जितनी जाहिर आवाजें हैं आप देखें एक हज है या एक हरम के अंदर कितने ही लोग एक ही वक्त में ये तो छोटी सी जगह है इतने लोग एक वक्त में हाथ उठाए में और सब पुकार रहे होते हैं और उसको कहीं गलती नहीं लगती कि किसने क्या कहा और ये तो सिर्फ एक छोटी सी जगह की बात है कहाँ पूरी जमीन और कहाँ पूरी कायनात में सारी मखलूक उसी को पुकारने लगी हुई है। इंसान ही है जो उसके से भागता है दूर और उसको साथ शेयर करता है मगर बाकी मखलूक सिर्फ अल्लाह ही को पुकारती है वो क्या पुकार रही है उसकी क्या डिमांड है उसकी क्या हाजत है उसकी क्या जरूरत है सब की बातों को जानने वाला और वो भी जानता है जो छुपाते हो तुम जो मुशरिकीन मक्का उस वक्त प्लॉटिंग कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें करने लगे थे अल्लाह ताला वो भी जानता है और जो भी किसी के दिल में है वो भी जानता है। तो इंटरनल मोटिव किसी के क्या है अल्लाह ताला को वो भी पता है। وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ और मैं समझता हूँ शायद कि वो एक फितना है तुम्हारे लिए और फायदा उठाने तक एक वक्त मुकर्रर ये असल में जवाब है इस बात का कि वो कहते थे मता हाज़ल वाद कब आएगा ये वादा
कब आएगा, कब? तुम तो कहते हो कि हमारे ऊपर अजाब आ जाएगा, कयामत आ जानी, कब आएगी फिर? लाते क्यों नहीं? तो मैं समझता हूँ कि ये एक आजमाइश है तुम्हारे लिए, कि अल्लाह ताला ने ढील दी हुई है तुम्हें, कि ढील मिलना भी आजमाइश है, कि कर लो जितना करना, मोहलत है, ताकि एंड में तुम ये ना कह सको कि अल्लाह मुझे कोई टाइम मिलता तो मैं मान ही जाता, कोई एक्सक्यूज ना रह सके, या फिर मताउन इलाही, या फायदा उठाना एक बहुत, ताकि मजे कर लो, उसके बाद तो दोबारा आना नहीं, और उसके बाद तो मजे भी नहीं तुम्हारी नसीब में, तो जी लो जितना जीना है, जी भर के कर लो जो करना, ये हो शायद। तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये हो या शायद ये हो, बाकी मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला को बेहतर पता है। मुझे ये भी नहीं पता कि करीब आ गया तुम्हारा वक्त या दूर है। पैगंबर खुद ही नहीं लोगों को फैसले सुनाया करते थे, वो बस उतना ही कहते थे जितने अल्लाह ताला की तरफ से उन तक बात पहुंची होती, इतना ख्याल करते थे ना बोलते, हम तो फौरन फतवा दे देते, बस इसके ऊपर तो अब अजाब ही आके रहना, अब इसने बचना नहीं है, अब इसके तो साथ यही होना, हालांकि हमें कुछ भी नहीं पता होता। काला रब्बिहकुम बिलहक, उसने कहा, ये नबी की दुआ थी जो कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे कोट की, और फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो नबी को फरमाया वो तो बता ही दिया गया, और नबी ने आगे से क्या फरमाया, रब्बिहकुम बिलहक, ए अल्लाह फैसला कर दे हक के साथ, जो हक है वो सामने ला दे, और रब्बुना रहमान मुस्तान, और हमारा रब जो है रहमान है, वो ये वो वाली दुआ होती है जब पैगाम दिया जा चुका हो, लोग नहीं मान रहे, और फिर अब पैगंबर कहता है ना अल्लाह फैसला कर दे, शुएब अलैहिस्सलाम का भी सूरह आराफ में हमने पढ़ा था, उन्होंने फरमाया अल्लाह फैसला कर दे मेरे दरमियान, मेरी कौम के दरमियान, अब तू हक के साथ फैसला कर दे, तो आपसे सलाम भी यही फरमा रहे हैं कि ए मेरे रब फैसला कर दे। यहाँ देखिए ना, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी उसको कोट किया है कि आप सल्लम ये फरमा रहे हैं, काला उसने कहा, किसने, नबी सल्लम ने, और ये इतनी खूबसूरत बात है, इसमें मोहब्बत भी है, इसमें इज्जत भी है जो आप सल्लम को दी गई, कि आपकी बात को कुरान की जीनत बना दिया, कि आप सल्लम ने फिर अल्लाह ताला से फैसला मांग लिया, अल्लाह फैसला कर, तू रहमान है अल मुस्तान, जिससे मदद तलब की जाए। जब पता चल गया कि अब ये तो बिल्कुल आखिरी हरबों पे उतर आए हैं और कत्ल के लिए दर पे हो गए, तो अब अल्लाह तू फैसला करते हमारे दरमियान, तू तू ही जानने वाला ना, और तू रहमान है। अब देखिए ना, अल्लाह ताला को उसकी रहमत से पुकारा, तू रहमान है, फिर अल्लाह की रहमत से फिर कौन मायूस हो सकता है जिसका नाम ही रहमान हो, और ये कि तू अल मुस्तान है, मुस्तान का मतलब जिससे मदद मांगी जाए, हर हालात में, हर सिचुएशन में, हर टाइम में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किस बड़ी चीज की मदद मांगो छोटी की नहीं मांगनी, ये नहीं है, इस टाइम पे मांगो इस टाइम पे नहीं मांगनी, ये नहीं है, मुस्तान हमेशा ही जिससे मदद तलब की जाए, तो तू अल मुस्तान है जिससे मदद तलब की जाती है, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था ना, वल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह ही है जिससे मदद तलब की जाए जाती है, अलामा तसिफून, इस पर जो वो बयान करते हैं, जो वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, अल्लाह ताला के साथ शिर्क की बातें करते हैं, इसके ऊपर, या मुखालफत की मुसलमानों के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर अल्लाह तू है जिससे मदद तलब की जानी चाहिए, ये बहुत ही प्यारी बात है उसके लिए जिसके कोई आगे दुश्मन हो, जिनके मुकाबला वो खुद नहीं कर सकता, तो आगे से वो यही कह सकता है, चाहे वो दुश्मन फिजिकल हो या वैसे ही बातों से इंसान को अजियत देने वाले, रब्बुना रहमान अल मुस्तान, हमारा रब रहमान है अल मुस्तान, जिससे मदद तलब की जाए, और अल्लाह ताला ने फिर फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था हिजरत का। तो यहाँ तक ये सूरत, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सूरत, पूरी ये समझ लेंगे, सूरतें ऐसे हैं जैसे पूरे पूरे कोर्स होते हैं, इतनी रिच सूरतें होती हैं, पूरा इनका थीम होता है, पूरी इनकी किसी चीज के गिर्द घूम रही होती है, बहुत कुछ सिखा के जाती है, अल्लाह ताला इनसे सबक सीखने वाला हम सबको बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, तिलावत सुने।
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.